جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہیں، اس میں رازداری اور خاموشی، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو، جو چیزیں آدمی ایکسپیرئنس کرتا ہے، فیل کرتا ہے یا آبزرو کرتا ہے، اگر وہ سب کے لیے ہوں تو پھر سب کو کھلے عام نظر آنے لگیں، اور جو ایکسپیرئنس ایک کو ہوتا ہے وہ بار ریئرلی کسی دوسرے کو وہی ایکسپیرئنس ہوگا، وہ ہر انسان کی روح کی جو کیفیت ہے، اس کی بالیدگی کا جو لیول ہے، اور جو اس کی روح کی کیمسٹری ہے، اور پھر جس قسم کی عبادات میں اور جس قسم کے رویوں میں وہ مبتلا ہے، یہ سارے فیکٹر مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیرئنس کرے گا، وہ اس پرٹیکولر آدمی کے لیے پیکیولر ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر خواب و نصیحت کے رنگ میں دوسروں کو کہے، اگر وہ چیزیں بیان کر دے، تو پھر وہ آئندہ کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اور دوسری ایک اور بڑی بات ہے، ایک تو مقام جنون کا ہے، دوسرا ادب کا ہے۔ اگر جب آپ رب کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے حضور حاضری دے رہے ہیں، تو وہاں آدمی جنونی ہو جائے، جتنا جنونی ہو جائے گا، جتنا جنون کی حالت میں چلا جائے گا، اتنا ہی بہتر رہے گا، کیونکہ وہ تو رب ہے، اسی جنون میں ہی وہ حاصل کرتا ہے رب سے بہت کچھ۔ لیکن دوسرا مقام مقام ادب ہے، تو اس مقام پر جتنا مؤدب ہوگا، جتنا ریسپیکٹفل ہوتا جائے گا، اتنا وہاں سے پاتا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی پرواہ نہیں کہ کون میرے لیے کس طرح سے ریسپیکٹفل ہو رہا، لیکن رب اس کو بڑی ویلیو دیتا۔ تو کہ اس مقام پر گفتگو کرتے ہوئے واپس آنا، بے شک وہ کسی کے بھلے ہی کی گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہے، وہ بھی خلاف ادب ہے میرے نزدیک۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہوٹل کی سے نکلے اور روانہ ہوئے مسجد کی طرف، تو پھر خاموش رہے انسان اور دل میں درود شریف پڑھتا رہے، اور اسی طرح جب آپ مسجد سے روانہ ہوتے ہیں ہوٹل کے لیے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی جائے، درود شریف پڑھتا ہوا خاموشی سے چلائے، ہوٹل میں آگے کر لے گفتگو۔ تو یہ گفتگو بھی میرے نزدیک خلاف ادب ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے وہاں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اشارہ کیا جائے کسی کو۔ تو یہ حاضری کے سلسلے میں ادب بہت، غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ افسوس کیا جائے، بلکہ اگر یہ علم میں آ جائے تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں ہوگی، تو اور مزید پھل پاتا ہے بندہ۔ شاید آج آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ میرے ساتھ مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں میں آپ کا واقف کیوں نہیں بنتا، وہاں نہ میں کسی سے کی طرف دیکھتا ہوں، نہ کسی سے گفتگو کرتا ہوں، اپنے خاموشی سے۔ وہ آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، خواب بابا صاحب ہوں یا عبد الرحمٰن صاحب ہوں یا سلطان اکباہو صاحب ہوں، بہت بڑے لوگ ہیں یہ، اور ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی میں ایک فاصلے پہ روکوں اور وہاں سے میں پیدل ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دوسرا جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یا حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوں، تو بجائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی، خاموشی سے چلوں اور کار میں بیٹھ کے جو مرضی کر لوں۔ تو یہ بات آج آپ کے اوپر یہ بھی کھل جائے گی کہ میں جب اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو گاڑی اتنی دور کیوں کھڑی کرتا ہوں۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قبرستان کے جس حصے میں وہ دفن ہے، اس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جس کے باہر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں۔ درمیان میں آپ نے دیکھا ایسی سڑک ہے نا، تو سڑک کے پار میں ادھر کھڑی کر کے پھر پیدل چل کے جاتا ہوں وہاں تک۔ وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے، کیونکہ میرے مرشد ہیں تو वहाँ तक मैं इनके ठिकाने तक कभी गाड़ी में नहीं जाऊँगा। तो ये बातें शायद काम आ जाएं आपके, आप जानते तो हैं, आप इससे ज़्यादा जानते हैं, इससे बेहतर जानते हैं, लेकिन शायद किसी काम आ जाए आपके। आप पढ़े लिखे लोग ही नहीं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, तो बड़ापन है आपका ये कहते हैं कि यहाँ आके कुछ किसी को सीखने को मिलता है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने किसी को क्या बताना जा साहब, मैं तो जो दिमाग में आई कहती बात। बेशक 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 बेशक। तो ये तकवीन, जो ये तकवीन का मसला है, ये इतना खुफिया है कि कहीं उसकी कोई एक झलक कहीं हल्की सी दिखाई दे जाए किसी को तो इत्तफाक होगा वो, वरना इस चीज़ को बहुत ही पर्दे में रखा जाता है कि ये तकवीन का सिलसिला है क्या, क्योंकि जितना उसकी गहराई में उतरते जाएंगे उतने ही वो अकल से मावरा होती जाती बात, उस तक अकल पहुंच नहीं पाती कि ये निज़ाम है क्या। तो जो चीज़ अकल से मावरा है, जैसे तकदीर के बारे में डिस्कस करने से मना फरमाया, रूह के बारे में मना फरमा दिया, जो जो इसको आप खंगालेंगे तो आदमी परेशान होता क्योंकि अकल से बहुत बाहर हो जाता है उसका, इसलिए उसके बारे में मना किया हुआ। यही हाल तकवीन का है कि तकवीन समझ में नहीं आएगी किसी के कि ये निज़ाम चलता कैसे है, क्या हो रहा है, तो इसको खुफिया रखा हुआ है। ये हल्की सी झलक कहीं किसी ने आपको दिखा दी, लेकिन इसके बारे में किसी को ज़ाहिर करना नहीं चाहिए, और ना जो सही साहिब इल्म है वो ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इस राह में जो सही साहिब इल्म है, जैसे मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ कि वली अल्लाह दो झूठों के दरमियान छुपा हुआ होता है, एक तो वो है जो कुछ नहीं है वो अपने आप को बहुत कुछ ज़ाहिर करता है, और दूसरा वो है जो सब कुछ है अपने आप को कुछ नहीं ज़ाहिर करता, तो दोनों ही झूठ हैं। तो इन दोनों झूठों के दरमियान लिपटा हुआ वली अल्लाह है। तो साहिब इल्म जो है वो ऐसी बातें कभी ज़ाहिर नहीं करते, बातें वही ज़ाहिर करेगा जो वाकईतन साहिब इल्म नहीं है। अब ये बताइए कि जब आप अपने वालिद साहब के पास जाते थे कि कॉलेज जाते हुए मुझे 10 रुपये दे दें, तो उनसे वो 10 रुपये डिमांड करते हुए आपके दिल की कैफियत क्या होती थी? एक तो ये खौफ होता है डांट ना पड़ जाए, अपने कसूर याद आते हैं कि अच्छा मैंने फला वक्त ये काम किया था वालिद को याद है, अब पैसे मांगने जा रहा हूँ तो कहीं पैसे मिलते मिलते उसके जूते ना पड़ जाएं। तो वालिद के पावरफुल और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होने का एक एहसास रहता है ना, और दूसरा ये भी होता है कि वालिद हैं देंगे ज़रूर दे देंगे, चलो 10 नहीं देंगे 5 तो ले ही लूँगा इनसे, है ना, ये कैफियत होती है हम सब की, सभी इस एज से गुजरे हुए हैं हम। अब आप ये बताइए कि वो कैफियत खौफ और उम्मीद की है या नहीं? तो वालिद के साथ अगर हमारा ये रवैया है तो वो तो फिर रब है ना। तो इस कैफियत को जो वालिद से पैसे मांगते हुए होती है वो खौफ और उम्मीद की कैफियत है, तो इसी कैनवस को अगर बड़ा कर लें आप तो वो रब के बारे में कहा है। देखिए वो तो है रब। तो एक दिन यहीं बैठे हुए मैंने रहमान और रहीम की एक्सप्लेनेशन के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज की थी कि अगर ग्रामर की रूह से देखेंगे तो दोनों लफ्ज़ एक ही हैं मायने के लिहाज से, रहमान और रहीम दोनों के मायने एक हैं, लेकिन अल्लाह के एट्रीब्यूटरी नामों में ये दोनों मुख्तलिफ आए हैं, दोनों ही नाम मेंशन हुए हैं, रहमान भी और रहीम भी। तो चूँकि वो सिफाती नाम हैं जो लिखे हैं 99 में से 98 नाम सिफाती हैं, एक इसमें ज़ात है, तो इस जब इसको दो नामों में बयान किया गया रहमान और रहीम अलहदा अलहदा से, तो इसका मतलब ये है कि मायने के लिहाज से तो हम वजन हैं, ये एक ही हैं, लेकिन कहीं पे एक फाइन डिफरेंस कहीं इनका मौजूद है। तो वो मैंने अर्ज़ किया था कि रहमान वो है जो बग़ैर मांगे और बग़ैर किसी को देखे अता करता है। तो मैं ये कहता हूँ बगैर देखे से मुराद ये नहीं आंखें बंद करके, मुराद ये है कि बगैर ये सोचे या बगैर इसका लिहाज रखे कि कौन मेरा मानने वाला, कौन मेरा मुनकर और कौन मुशरिक और कौन नाफरमान और कौन फरमा बरदार, वह सबको खुले हाथ से अता करता। तो उसकी बगैर मांगे और बगैर किसी का ये लिहाज रखे कि कौन क्या है, अता करने की सिर्फ रहमानियत है, तो उस लिहाज से वो रहमान कहलाता है। और रहीम वो है जो अपने फरमाबरदार बंदों को अता करता है और जो ना मांगने से नाराज होता है। ठीक है, उसकी ये सिफत कि अगर उससे न मांगा जाए तो वो नाराज होगा, वो उसको रहीम बनाती है। तो वो रहमान भी है और रहीम भी है। तो जो कुछ वो रहमान होने के बावर्चू ऑफ बीइंग रहमान जो कुछ उसने देना है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, हर कोई लेता जाएगा उससे। तो बावर्चू ऑफ रहीम जो उससे मिल सकता है वो ना मांग कर हम मारूम क्यों रह जाए उससे, है ना। तो उसको नाराज क्यों करें कि मुझसे नहीं मांगा गया। तो इसलिए उससे खूब दिल खोल के मांगिए, लेकिन ये जरा याद रहे कि मांगने के लिए भी ज़र्फ चाहिए। शहंशाह अकबर बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, उसके पास तालीम नहीं थी, क्योंकि जिन हालात में उसकी पैदाइश हुई और उसका बचपन गुजरा, अर्ली ईयर्स, वो कोई ज़्यादा अच्छे हालात के नहीं थे, क्योंकि उमरकोट के मकाम पर इसकी पैदाइश हुई थी और हुमायूं उस वक्त शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त खा के दौड़ रहा था और शेरशाह उसका ताकुब कर रहा था। तो उसी कैफियत में इसकी उमरकोट के मकाम पर पैदाइश हुई। उसके बाद वो ईरान चला गया हुमायूं और वहाँ जलावतनी उसने काटी, फिर वापस आया। तो इसका बचपन का दौर क्योंकि कोई ज़्यादा सेटल्ड नहीं था तो इसकी तालीम नहीं हो सकी, लेकिन हुमायूं का एक बड़ा जानिसार और जीनियस शख्स सिपा सलार था दारम खान। तो हुमायूं ने इसको उसके ज़ेर तरबियत रखा था कि इसको तुम तमाम फ़नून सिखा दो। तो बैरम खान चूंकि खुद जीनियस था तो अकबर की तालीम और तरबियत उसने कमाल की कर डाली थी। सिर्फ उसको इल्म नहीं वो हासिल कर सका, लेकिन उसकी तरबियत बड़ी कमाल की हुई। इसी तरबियत का नतीजा था कि बड़ा होके वो अकबर आजम कहलाया। उसके अंदर हज़ारों खूबियाँ थीं, खामियाँ भी थीं यकीनन। वो खामियाँ इसलिए दराईं कि तालीम ना होने की वजह से वो बहक गया। तो जब हुमायूं का इंतकाल हो गया और अकबर तख्त पर बैठा, बैरम खान उसका अतालीक मुकर्रर हुआ क्योंकि बहुत कम उम्र था। तो बैरम खान ने शुरू के साल हुकूमत हज़रत में बैरम खान में ही ने चलाई और बहुत वफादारी के साथ चलाई। वर्चुअली चूंकि किंग बैरम खान था, हुकूमत जो चला रहा था, तो दरबार में उसकी मुखालफत बहुत थी और अकबर नातजर्बकार था। तो दरबारियों ने इसके कान भरने शुरू कर दिए बैरम खान के। नतीजा ये हुआ कि अकबर बैरम खान के ख़िलाफ़ हो गया और अकबर ने बैरम खान से ये सजेस्ट किया कि आप बूढ़े हो गए हैं तो गवर्नमेंट के खर्च पे आप हज कराइए। तो बैरम खान हज के लिए रवाना हुआ और एज पर प्लान गुजरात काठियावाड़ के इलाके में रात को उस पर हमला हुआ और वो कत्ल कर दिया गया। तो उसके कत्ल कर देने के बाद अकबर को होश आई कि मैंने किया क्या है। तो इसे दुख हुआ इस बात का। तो उसका बैरम खान का एक बेटा था अब्दुल रहीम खान, वो बहुत छोटा था। तो अकबर ने उसे अपने पास ले लिया और महल में उसकी तालीम और तरबियत करवाई। इंतहाई आला दर्जे की ट्यूटर्स उसको प्रोवाइड किए गए और ये भी अपने बाप की तरह जीनियस निकला। तो इसको खाने खाना का खिताब दिया गया था, अब्दुल रहीम खाने खाना, अगर अब याद आ जाएगा आपको। तो अकबर इसकी इज्जत करता था अपने उस जुर्म की वजह से ज़्यादा, लेकिन इसमें काबिलियत भी बेपनाह थी। तो एक मुहिम के सिलसिले में अब्दुल रहीम खाने खाना कहीं जा रहा था, साथ ज़ाहिर है जुलूस उसका पूरा उसके ओहदे के मुताबिक चलता था। तो रात को उसने एक जगह पड़ाव डाला। तो आधी रात के बाद उस जंगल में एक बहुत प्यारी आवाज़ गूंजी, क्योंकि फारसी के में वो शेर कह रहा था और फारसी किसी पढ़े लिखे आदमी की बस की हो सकती, मेरी नहीं। तो वो उसका एक ही मुझे कहीं मिसरा टूटा फूटा याद रह गया है कि वो उसका मिसरा ये था कि मनम के हर जा रसीद खैमा जद बारगाह साख्त, कि बादशाह जहां कहीं भी जाता है उसका दरबार, उसका खैमा लगता है और दरबार सज जाता, ये उसका एक मिसरा था। मनम के हर जा रसीद खैमा जद बारगाह साख्त, तो ये सदा आधी रात के जंगल में गूंजी और ज्यादा अच्छी लगी। तो खाने खाना ने कहा कि देखो कौन है ये, तो सिपाही गए जाके पकड़ा एक साहब को, वो फकीर था, तो उससे कहा कि क्या तुम पढ़ रहे थे, उसने कहा जी मेरा अपना कलाम है ये। तो इसने अशरफियों की एक थैली उसको इनाम में दी। अगली रात को फिर वही आवाज गूंजी, फिर इसने एक थैली दे दी। तीसरी रात को फिर वही आवाज इसने सुनाई दी अगले पड़ाव पे, फिर एक अशरफी दे दिया। अब इसका ये हो गया, चौथी रात को इंतजार करता रहा, वो आवाज नहीं आई। इसने सिपाहियों का कहा जाओ ढूंढो वो फकीर अगर मिल जाए, ढूंढा नहीं मिला। कहने लगा कि फकीर बहुत ही कमजर्फ था, मेरी तो 15 मंजिलें थी, मैंने 15 थैलियों की थैलियां अशरफियों की ये रख ली थी कि हर मंजिल पर एक दूंगा, इसे कमजर्फ था, 3 में टल गया। तो मांगने के लिए भी तो जर्फ चाहिए डॉक्टर साहब, तो रब से जब मांगे तो उस फकीर की तरह मत रहिए कि 3 अशरफियों की थैलियां लेके आदमी टल जाए। उससे वो चीज मांगिए जिससे वो कराहत ना खाता हो। तो पिछली ही शायद नशिस्त में मैंने अर्ज किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे मदीना मुनव्वरा से बाहर, जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो उन दिनों मदीना मुनव्वरा इस तरह से वाक़ था कि कब्रिस्तान उसके बाहर था और दाखला आमतौर पर कब्रिस्तान के जरिए से ही होता था मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो वहाँ कब्रिस्तान में एक मरी हुई बकरी पड़ी थी जिसमें कीड़े चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के करीब खड़े होकर आपने सहाबा किराम से फरमाया कि तुम में से कौन इस बकरी को खरीदेगा। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मरी हुई बकरी है और वो भी ऐसी कि गल सड़ गई है, कीड़े चल रहे हैं, तो इसको कौन लेगा। तो फरमाया कि फिर ये समझ लो कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत वही है जो तुम्हारे नज़दीक इस गली सड़ी बकरी के किसी एक बाल की। तो आप अल्लाह से वो चीज़ मांगना चाहते हैं जिसके बारे में, या मैं या हम में से हर आदमी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दी थी। तो हम अल्लाह से वो चीज़ क्यों ना मांगें जो बेहतर हो, जो उसे भी पसंद आए, उसे ज़रूर मांगिए। उससे उसका रहम मांगा जा सकता है, उससे उसकी रहमतें मांगी जा सकती हैं, उससे उसका फजल मांगा जा सकता है, उससे बख्शिश मांगी जा सकती है, उससे उसका करम मांगा जा सकता है, उससे उसका कुर्ब मांगा जा सकता है, उससे उसकी दोस्ती मांगी जा सकती है, और फिर अगर इससे भी दो हाथ आगे जाना चाहें तो उससे उसके शायान शान कुछ मांगिए। तो उसके शायान शान तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो खुद उसकी अपनी ज़ात है। तो उससे उसकी अपनी ज़ात क्यों नहीं मांग लेते आप कि अल्लाह तू अपना आप मुझे अता फरमा दे, ये उसके शायान शान है। क्योंकि उसके शायान शान बस एक ही चीज़ है जो उसके खुद अपनी ज़ात है। तो मांगने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। देखिए उर्दू का लफ्ज़ है शाया निशान, मतलब ये है कि जो उसकी शान है, जो उसका मकाम है, उसके मुताबिक उससे कुछ मांगा जाए। तो उससे मैच करती हुई तो उसकी अपनी ज़ात ही है, बस उसकी शान से मुताबिक तो वही रखती है। देखिए रहीम तो खैर वो मैंने पहले अर्ज कर दिया आपसे, करीम तो वो है जो कर्म करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये शायद यूँ आपकी समझ में आ जाए बात कि लंदन में एक साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा, ये ऐसे सवालात मेरा ख्याल है कि यहूदी लॉबी से फ्लोट होते रहते हैं, जिसको हम पिक कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक भटकते रहते हैं और बहकते रहते हैं। तो एक सवाल यूके में मुझसे एक नौजवान ने पूछा था, मुझे खुशी थी कि वो सवाल पूछा। ऐसे सवालात अगर पूछे जाएँ और उसका जवाब उन्हें मिल जाए तो नुकसान होने के बजाय फ़ायदा हो जाता है। तो यहूदी लॉबी को डिफीट करने का आसान तरीका ये है कि नौजवानों को इस किस्म के चुभते हुए बाइटिंग क्वेश्चंस करने के लिए इनक्रेज किया जाए, ताकि जो सवालात उनके जहन में आएँ, उनके जहन में डाले जाएँ, वो किसी ना किसी से पूछ लें, उसका उनको सेटिस्फेक्ट्री जवाब मिले और फिर वो आगे से मुतमईन हो जाएंगे। तो मुझसे एक सवाल ये पूछा गया कि साहब ये बताइए कि हम सभी ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला है, और साथ ही हम ये कहते हैं कि वो बड़ा रहीम करीम भी है। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ बख्श देगा, और ख़ुद ही कहते हैं वो रोज़े हिसाब भी है, रोज़े इंसाफ भी है, तो दोनों में से सच क्या है? अभी सवाल बड़ा टेढ़ा था कि जब क़यामत के रोज़ इंसान के अमाल पर इंसाफ होगा तो इंसाफ करते हुए रहम और जुल्म दोनों का शायबा तक नहीं हो सकता। जब आपका अमल रहम और ज्यादती दोनों से पाक हो जाएगा तो वो इंसाफ कहलाएगा। तो उनको एक जवाब मैंने फिर ये दिया था, क़यामत के रोज़ रब ताला जब अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो मुनसिफ होगा, और वो इंसान के नामा अमाल पर बेस करता हुआ वो सबका इंसाफ कर देगा, किसी के साथ रत्ती बराबर ज्यादती नहीं होगी, और रत्ती बराबर किसी के साथ रू रियायत नहीं होगी, और बहसियत मुनसिफ के वो सजा सुना देगा। जब वो फैसला कर चुकेगा तो फिर उसकी शान करीमी जोश में आएगी और वो लोगों को माफ़ कर देगा, लोगों की सजाएं माफ़ कर दी जाएंगी। कंसिडरेशन बहुत सी हो सकती है कि उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, किसी ने सिर्फ उसके नाम की लाज रखी है और अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया है, किसी ने उसके नाम पर जान दे दी है, ये कंसिडरेशंस मुख्तलिफ। ये तो ऐसी मिसाल सी मैंने दो तीन कह दी थी, तो इन कंसिडरेशन से वो फिर माफ़ फरमाएगा। तो दोनों ड्यूटीज़ वो बड़ी खूबसूरती से अदा करेगा, मुनसिफ की भी और करीम होने की भी। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको करीम का समझ आ गया होगा। और एक मज़े की चीज़ जो शायद बहुत ही कम लोगों के इल्म में होगी, ये अर्ज कर दूं कि हज़रत अली करमल्ला वजहू हम कहते हैं, बाकी तमाम सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, लेकिन हज़रत अली करमल्ला वजहू के लिए हम हज़रत अली करमल्ला वजहू और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों कहते हैं। तो ये करमल्ला वजहू जो है ये हज़रत अली करमल्ला वजहू के नाम के साथ किस तरह से आया, उसकी वजह यह है कि हज़रत अली करमल्ला वजहू या करीमों का वर्द हर वक्त फरमाते थे दिल में, उस नस्बत से करमल्ला वजहू आया है। और इसी तरह जो हज़रत अली करमल्ला वजहू की अंगूठी थी जो पहनी हुई थी उस पर लिखा था या करीमों, करमल्ला वजहू कहने की वजह यह है। वो मैंने शुरू में अर्ज़ की थी, रब का मामला ज़रा सा मुख्तलिफ है, इसलिए कि वह रब है, वो तमाम चीज़ों से बालातर है, और उसकी शान रबूबियत ही ये है कि वो किसी चीज़ को देखता ही नहीं। वो गाली देने वालों को जो उसे गाली देते हैं माज़ल्लाह, उनकी दुआएं सबसे जल्दी सुनता है, दुनियावी आराम और आसाइश सबसे ज़्यादा उन्हें ही अता कर देता है, क्योंकि भूले से हम इसी गलतफहमी में रहते हैं कि दुनियावी आराम और आसाइश बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि उसके नज़दीक बड़ी ही फ़कीर चीज़ है। तो उसके साथ तो जितना मोहब्बत और प्यार में पागल हो जाएगा बंदा, जनून में जाएगा, उतना उसे अपना करीब करता जाता। तो जहाँ जनून होगा वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और अदब आदाब काम नहीं करते। आप वकालत के पेशे से हैं, आपको मालूम है कि जो पीनल कोड है ये पागल आदमियों पे एप्लीकेबल नहीं है। जो आदमी अगर पागल है, उसने किसी को कत्ल कर दिया, तो उसको दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, उसे पागलखाने भिजवाया जा सकता है, ऐसे ही है, इसलिए कि वो तो जुनून में जा चुका, होशो हवास से मावरा हो गया। शरीयत की पाबंदी हर एक पे फ़र्ज है, और शरीयत की हदूद लागू होती हैं हर मुसलमान पर, हर कलमा के ऊपर, लेकिन जो पागल है, होशो हवास से आ रही है, वो शरीयत की पाबंदियों से आज़ाद हो गया, उसको दुर्रे नहीं मारे जा सकते, उसका इलाज किया जाएगा। तो रब के बारगाह में जनून की वैल्यू ज़्यादा है कि जो उसके मोहब्बत में पागल हुआ वो उतना ही उसके करीब हो गया। तो वहाँ प्रोटोकॉल्स और अदब आदाब بےمانی ہے, وہاں جنون کام آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی ہے جہاں ادب آداب بے پناہ ہونے چاہیے, وہاں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری شائستگی کے ساتھ بہت مؤدب ہو کے حاضری دی جانی چاہیے, کیونکہ وہاں فرشتے بھی مؤدب ہیں. شاید دو یا تین ہفتے پہلے یہاں ایک ذکر کیا تھا میں نے کہ رب تک پہنچنے کے لیے دو راستے استعمال ہوتے ہیں, ایک طریقت کا دوسرا شریعت کا. طریقت کے راستے جو ہیں اس میں ہم پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز کو پکڑتے ہیں, اس کو تھامتے ہیں, تو وہاں سے ہم پہنچا دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک, اور وہاں سے پھر رب تک پہنچا دیا جاتا ہے. شریعت میں امام شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑتے ہیں اور رب تک پہنچا دیے جاتے ہیں. لیکن شریعت کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے, کہ اتفاق ایسا ہے کہ اسلام اصل میں نام ہے, دوسرا نام ہے ایثار اور قربانی کا. وہ ایثار اور قربانی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, انسان کے ٹائم, اس کا آرام, اس کی خواہشات, ان سب کی قربانی کر کے انسان شریعت پہ عمل پیرا ہو پاتا, جو آبویسلی بڑا دشوار ہے کام. تو اس کو آسان کرنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا گیا کہ طریقت کا راستہ اختیار کر لیا جائے. تو طریقت کا راستہ کیا ہے کہ اس میں, اس راہ میں انسان ایک شخص کو اپنا استاد مان لیتا ہے اور پھر اس کی زیر نگرانی اپنی تربیت کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ قدم بہ قدم وہ بری چیزیں چھوڑتا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کو اپناتا جاتا ہے کہ شریعت نے ان کا حکم دیا ہے. تو یوں گریجولی ایک شخص کی زیر نگرانی رہ کے, جو انسان کا پاؤں پھسلنے کی صورت میں فوراً بازو سے پکڑ کے جھٹکا دیتا ہے کہ غلطی کر رہا ہے, سنبھل جاؤ, تو انسان ایک ایک قدم آگے بڑھتا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کر لے. تو یوں وہ رب کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے.